नमस्कार। आज हम वंदनी माता भगवती देवी शर्मा के एक बहुत ही प्रेरक उद्बोधन पर चर्चा करने वाले हैं। शीर्षक है तपस्या के लाभ। ये उद्बोधन आम भारतीय नागरिक को ध्यान में रखकर दिया गया लगता है ना? और इसमें तपस्या के, आप कह सकते हैं, आध्यात्मिक और जो व्यावहारिक पहलू हैं, दोनों पर ही काफी रोशनी डाली गई है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि आज वंदनीय माताजी के विचारों से हम समझें कि तपस्या का असली मतलब क्या है, और इससे आत्मिक उन्नति तो ठीक है, पर समाज का भला, मतलब लोकमंगल, वो कैसे संभव है। एक बात जो माताजी कहती हैं वो मुझे काफी सोचने पर मजबूर करती हैं। वो कहती हैं कि साधक का अनुष्ठान कभी अकेला नहीं होता, उसमें गुरु की सूक्ष्म उपस्थिति भी होती है और उस जगह की, मतलब वातावरण की, ऊर्जा भी जुड़ी होती है। ये थोड़ा गहरा है, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे?
वंदनीय माता जी इससे, आप कह सकते हैं, तपस्या की सफलता की एक तरह से कुंजी मानती हैं। उनका मानना है कि तपस्या सिर्फ जैसे शरीर को कष्ट देना या केवल मंत्र जाप करना नहीं है। उसकी सार्थकता, उसकी असली वैल्यू तब है जब व्यक्ति अपने अंदर परमात्मा से एक गहरा कनेक्शन महसूस करे और उसके हर काम में लोक मंगल की भावना हो, मतलब सबके भले की सोच। उन्होंने शांति कुंज का उदाहरण भी दिया है बहुत खूबसूरती से, कि वहां की भूमि जहां इतने ऋषि मुनियों ने तप किया है, वहां की ऊर्जा ही ऐसी है कि आज भी जो साधक वहां जाते हैं, चाहे वे कितनी भी परेशानियों से क्यों ना घिरे हों, उन्हें एक अजीब सी शांति, एक संतोष मिलता है। ये उस वातावरण की शक्ति है।
हाँ, ये अनुभव मैंने भी सुना है कई लोगों से, और इसी जुड़ाव और लोक मंगल की भावना की कमी का उदाहरण वो कहानी है ना, ब्राह्मण और ब्राह्मणी वाली, जिन्हें शंकर जी से वरदान मिला पर अंत में हाथ कुछ नहीं लगा।
बिल्कुल, वो कहानी
बड़ी दिलचस्प कहानी है। स्त्री ने अपने लिए रूप यौवन मांगा
जी,
पुरुष ने गुस्से में श्राप दे दिया कि पत्नी सुअर बन जाए।
हाँ, और फिर बच्चे ने माँ को वापस पाने का वरदान मांगा,
और अंत में सब जस का तस, मतलब वरदान पाकर भी खाली हाथ।
बिल्कुल सही। और ये किस्सा सीधे सीधे दिखाता है कि स्वार्थी साधना और निस्वार्थ साधना में क्या फर्क है। जब हमारी मांगे, हमारी इच्छाएं सिर्फ हम तक सीमित रह जाती हैं, अपने स्वार्थ तक, तो बड़े से बड़ा वरदान भी बेकार हो जाता है। इसके बिल्कुल विपरीत आप देखिए माता जी भगीरथ जी का, परशुराम जी का जिक्र करती हैं। उन्होंने भी कठिन तपस्या की, बहुत कठिन, लेकिन उसका फल सिर्फ अपने लिए नहीं रखा।
हाँ, उन्होंने लोक कल्याण में लगाया
जी। भगीरथ गंगा को धरती पर लाए सबके लिए, परशुराम जी ने आततायी शासकों का अंत किया समाज के लिए, इसीलिए तो वे आज तक पूजे जाते हैं। उनकी तपस्या सार्थक हुई।
तो इसका मतलब ये हुआ कि माताजी उस मानसिकता की, उस सोच की आलोचना कर रही हैं जिसे वो लाओ ही लाओ कहती हैं, मतलब हमेशा कुछ पाने की इच्छा मांगते ही रहना।
सही।
और इसके बजाय वो ब्राह्मणोचित जीवन जीने की बात करती हैं। ये ब्राह्मणोचित जीवन क्या है, इसका क्या अर्थ है?
देखिए, ब्राह्मणोचित जीवन से उनका मतलब उस जीवन शैली से है जो समाज को देता है, लेता कम है या नहीं है। ब्राह्मण का जो पारंपरिक कर्तव्य माना गया है वो क्या है? ज्ञान देना, संस्कृति फैलाना, सेवा करना, सच्ची भावनाएं देना, समाज के प्रति एक निष्ठा रखना, न कि केवल अपने लिए धन या सुख जमा करना।
अच्छा,
तो वंदनीय माताजी कहती हैं कि तपस्या का उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि हम अपनी ऊर्जा, अपनी साधना का फल समाज को दें, उसे अर्पित करें। सिर्फ मांगने वाले भक्त नहीं बनना है, बल्कि परमात्मा का अंग बनना है।
अंग बनना?
हाँ, अंग बनकर उनके काम में हाथ बटाना है। अंग बनने का मतलब है एक एक्टिव रोल लेना, परमात्मा की जो इच्छाएं हैं, जो वो दुनिया में अच्छा करना चाहते हैं, उसे साकार करने की जिम्मेदारी लेना। ये सिर्फ मांगने वाला रिश्ता नहीं, ये एक साझेदारी का, एक देने वाला रिश्ता है।
समझ गया। तो अगर हम पूरी बात का सार निकालें तो ये सामने आता है कि तपस्या का असली फायदा वो चमत्कार दिखाने में नहीं है, जैसे कुछ लोग हाथ से भभूत निकाल देते हैं या लौंग बना देते हैं।
बिल्कुल नहीं, वो सब गौण है।
या सिर्फ अपनी दुनियावी इच्छाएं पूरी करने में भी नहीं है।
नहीं, असली लाभ है आत्मशोधन में, अपनी कमियों को पहचानना, उन्हें दूर करना, ईश्वर के प्रति एक अटूट श्रद्धा, एक समर्पण पैदा करना, और सबसे जरूरी, लोक मंगल के लिए जीना, समाज के लिए कुछ करना। वंदनिया माता जी हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपनी छोटी सोच, अपने स्वार्थ से ऊपर उठें और समाज के जो दुख हैं, जो तकलीफें हैं, जैसे दहेज प्रथा है या दूसरी बुराइयां हैं, उनको दूर करने के लिए अपनी तप की शक्ति का इस्तेमाल करें।
हाँ, उन्होंने श्रद्धा के बल पर भी बहुत जोर दिया है। वो कहती हैं कि श्रद्धा हो तो साधारण कांच का टुकड़ा भी हीरे जैसा कीमती बन सकता है।
जी हाँ, श्रद्धा को वो परिवर्तन की, ट्रांसफॉर्मेशन की सबसे बड़ी शक्ति मानती हैं। इसी श्रद्धा पर तो गुरु और शिष्य का वो पवित्र रिश्ता टिका होता है। गुरु सिर्फ ज्ञान नहीं देता, वो शिष्य के कष्टों को भी बांटता है, उसके प्रारब्ध को भी हल्का करता है।
जैसे कृष्ण ने मीरा का विष पिया था।
बिल्कुल वही उदाहरण। वो इसी गहरे जुड़ाव और करुणा का प्रतीक है। ये श्रद्धा ही है जो शिष्य को बदलती है, उसे साधारण से असाधारण बनाती है, कांच से हीरा बनाती है।
और अंत में माताजी सभी साधकों से एक आह्वान भी करती हैं कि वे अपने हृदय की आग एक चिंगारी लेकर जाएं।
ये किस तरह की आग है, क्या मतलब है इसका?
ये आग है ज्ञान की, सकारात्मक बदलाव की, समाज सेवा की। माताजी ये चाहती हैं कि साधक सिर्फ अपनी साधना में ही ना खोए रहें, बल्कि उस साधना से जो ऊर्जा मिली है, जो प्रेरणा मिली है, उसे समाज में फैलाएं।
अच्छे साहित्य के जरिए, अच्छे विचारों के जरिए, अच्छे कामों के जरिए वो चाहती हैं कि हर साधक अपने आसपास जो अंधेरा है, जो अज्ञान है, जो समस्याएं हैं, उसे मिटाने वाली एक जलती हुई मशाल बने, एक चिंगारी बने जो और आग जला सके।
ये तो वाकई बहुत शक्तिशाली संदेश है, प्रेरणा देने वाला।
बिल्कुल। और शायद हम श्रोताओं के लिए एक विचार यह छोड़ सकते हैं। वंदनीय माता जी कहती हैं कि श्रद्धा और समर्पण से व्यक्ति हीरे जैसा बन सकता है। तो आज के इस युग में अपने अंदर उस असली हीरे को, मतलब अपनी जो वास्तविक क्षमता है, जो पोटेंशियल है, उसको पहचानना और फिर उसे समाज की भलाई के लिए तलाशना, इसका क्या मतलब हो सकता है, इस पर हम सब सोच सकते हैं।